सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए जो सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं वो है पेंटिंग और टॉपिक है मटेरियल यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस संचिता भट्टाचार्य जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार।
तो लर्नर कैसे हम पेंटिंग करेंगे, पहला नंबर में आता है पेपर, ड्राइंग पेपर, ड्राइंग कॉपी हमारे लिए बहुत एसेंशियल चीज है ड्राइंग और पेंटिंग के लिए। चलो लेट अस स्टार्ट, व्हाट आर द व्हिच टाइप ऑफ पेपर्स वी शुड चूज फॉर आवर ड्राइंग और पेंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग कॉपी मिलता है बाजार में, तो आप डिसाइड कर लेना, पहले तो छोटा कॉपी लेना क्योंकि आप सेकेंडरी लेवल में हो, तो बहुत बड़ा कॉपी मत लो। इससे क्या होता है, फुल पेज को कवर करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, कलर की भी जरूरत होगा, बहुत सारे ड्राइंग्स को भी बड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो इसीलिए छोटा पेपर लाइक A4 साइज पेपर आप लो, A4 साइज का जो ड्राइंग कॉपी मिलता है या उससे भी छोटा जो ड्राइंग कॉपी मिलता है वो लो, वो हाफ साइज होती है, तो वो वाली उसमें अगर ड्रॉ करते रहोगे आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से फुल पेज को कर सकते हो, फुल पेपर को कवर कर सकते हो। तो पेपर में हमें चाहिए कार्ट्रिज पेपर। व्हाट आर दिस कार्ट्रिज पेपर? सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल ड्रॉइंग एंड पेंटिंग एक्सरसाइजेस। इट इज सुटेबल फॉर वेट एंड ड्राई मीडियम, स्केचेस, कंपोजिशन, प्लांट्स एंड क्विक एक्सरसाइजेस। दिस पेपर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट इन A3 एंड A2 साइज, नॉट फॉर A4 साइज। लेकिन नाउ डेज आपको अगर कार्ट्रिज पेपर लेके उसको छोटा साइज करके भी आप कर सकते हो, दुकान से लेके फिर उसको कट करके बीच से एकदम बीच में से कट करोगे तो स्मॉल साइज हो जाएगा। यू कैन डू दिस। नंबर टू, क्राफ्ट पेपर। दिस पेपर इज यूज टू मेक ब्राउन पेपर बैग्स। इट इज ग्रेट फॉर यूजिंग एज अ मिड टोन इन चारकोल ड्राइंग्स। क्राफ्ट पेपर कैन बी यूज एज load benders between layers of petalized products. In addition to this extensive application, craft paper can be used as floor covering and operation like fiberglass operation and the painting of interior spaces as well as paint, masking and palette covering. Number 3, watercolor paper. Watercolor paper are the paper you can experiment using watercolor medium. That is a very very important for the watercolor medium, that is a watercolor paper. So learner, aap is color paper ko use tabhi karoge jab watercolor se koi painting karoge. Pehle hi aap plan kar lena ki kaun sa color aap use karoge, accordingly aap paper use karna seekho. This is the very very essential thing, chosen paper. That is why I am describing you ki different types of papers are there, so whatever you want you can choose. Assorted textured papers. Handmade papers have beautiful textures and are great for incorporating within paintings. It is also possible to purchase assorted packs of machine made textured paper which are very useful. Number 5, tracing paper. This is useful for developing ideas, overlaying on top of sketches to refine composition, etc. Or as an exciting surface to draw upon itself. Waterproof drafting film is also amazing to draw or paint upon. This is a translucent plastic sheet which does not warm. Number 6, canvas paper. A small roll of papered canvas or a canvas pad is great to have available. As with above, small quantities are typically used. Glued to preparatory sheets or sketchbooks pages to provide a varied drawing or painting surface. So these are the papers. If you, whatever you want, you can choose. एक चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जैसे कैनवस पेपर है, ओनली फॉर द कैनवस स्टैंड में अगर यूज करोगे तो वो कैनवस स्टैंड में ये कैनवस पेपर बहुत अच्छी तरह से लग जाती है, बट मैं ये बता रही हूँ कि कैनवस पेपर सिर्फ कैनवस स्टैंड के लिए ही है, ये नहीं है। ये बात सही है कि वो हम यूज बहुत ही अच्छी तरह से उसमें फिट आ जाती है, उसमें हम सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर इच्छा है कैनवस पेपर में, आप जमीन पे रख के या अपने टेबल पे रख के भी आप कर सकते हो ड्राइंग और पेंटिंग, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी तरह से कलर उसमें बहुत कलर एब्जॉर्ब होता है एंड बहुत अच्छा लुक आती है कैनवस पेपर में। तो कोई भी कलर का, पहले तो मैं ये बताऊंगी आपके पास जो अवेलेबल पेपर है, जो बुक्स या कॉपीज आपके लिए ऐसी स्पेयर कॉपीज होती है, जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में कुछ ड्राइंग बुक्स खरीदे थे, उसमें कुछ लूज शीट होती है, कुछ में उसमें कुछ पेपर्स ऐसी बच जाती है, तो उस पेपर में भी आप अपना काम प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना वर्क कर सकते हो। और वो प्रैक्टिस के लिए आप रखना, लेकिन जब आप कोई भी फाइनल पेंटिंग करोगे, लाइक हमारा जो पोर्टफोलियो सबमिशन होता है उसके लिए जब आप बनाओगे, तो अवश्य अच्छा पेपर में करना, ताकि उसमें आपको नंबर भी अच्छा मिल जाए। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप कुछ भी अच्छा पेंटिंग करोगे, अच्छा ड्राइंग करोगे फॉर द सबमिशन के लिए, या आप कोई अच्छा सा ड्राइंग करके आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वो आप अच्छा पेपर में ही करना। पेंसिल, अभी आती है पेंसिल की बात। देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ पेंसिल्स टू चूज फ्रॉम विच कैन बी कन्फ्यूजिंग। नाउ लेट अस नो द बेस्ट पेंसिल फॉर ड्राइंग एंड स्केचिंग आर मोर ग्राफाइट लेस क्ले। दिस इज अ वेरी गुड पेंसिल फॉर द ड्राइंग एंड पेंटिंग। सो ग्राफाइट पेंसिल क्या चीज है? दीज आर द मोस्ट कॉमन पेंसिल यूज इन आर्ट एंड राइटिंग। चारकोल पेंसिल्स क्या है? क्रिएट डार्क एंड रफ लाइन्स बट नॉट एज वर्सटाइल एज द अदर ऑप्शंस। कलर पेंसिल, कलर पेंसिल क्या है? सिमिलर टू नॉर्मल ग्राफाइट पेंसिल्स बट इन कलर। द सॉफ्टर बी पेंसिल्स आर ग्रेट, जनरली कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर शेडिंग। द HB एंड H पेंसिल आर गुड चॉइस फॉर फाइन लाइट इवन शेडिंग। हाउएवर दे टू हैव ड्रॉबैक्स। सो लर्नर, अब कुछ भी ड्राइंग पहले बनाने के लिए आपको H पेंसिल लेना है, सॉफ्ट पेंसिल होता है वो, डिफरेंट है 2H 3H इस तरह के पेंसिल होता है, पेंसिल का नंबरिंग होता है, जितना आगे की तरफ जाएगा वो ज्यादा सॉफ्ट होता जाएगा। और जो HB पेंसिल है वो जितना ऊपर की तरफ जाओगे, HB पेंसिल जो 6HB 7HB इस तरह के जो पेंसिल होता है, जितना नंबरिंग ऊपर की तरफ जाता है वो डार्क होता है। तो इस तरह की पेंसिल आप तभी यूज करोगे, जो डार्क पेंसिल की बात मैं कह रही हूँ, जो ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद जो आउटलाइन होता है उसको फाइनल करने के लिए HB पेंसिल, और वो जितना डार्क हो उतना अच्छा है, और उसको थोड़ा सा शार्प कर लेना। हाँ, इसमें एक बात आती है, शार्पनर। शार्पनर कैसे हम यूज करेंगे? कैसा? नॉर्मल शार्पनर यूज करना, बाजार में अवेलेबल होता है बहुत सारे शार्पनर, तो नॉर्मल शार्पनर यूज करना। और एक बात है, शार्पनर को बहुत अच्छी तरह से पेंसिल अगर शार्प करोगे तो वो जो एकदम से पॉइंटेड बन जाती है, उससे आप एक पेंसिल वैसे रखना जरूर, लेकिन बाकी सारे पेंसिल को उस तरह से एकदम से शार्पन मत करना। उससे क्या होता है, आप जब ड्राइंग करोगे एकदम पॉइंटेड वाला चीज आती है, वो हमारी ड्राइंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। बिकॉज हम जब भी कुछ ड्रॉ करते तो हमें थिकनेस की बहुत जरूरत होती है, पेंसिल थिक। तो इसीलिए सॉफ्ट पेंसिल से आप कुछ भी चीजें जब ड्रॉ करो, कोई कटर से भी आप पेंसिल शार्प कर सकते हो। तो कटर का क्या है, कटर से आप जब शार्प करोगे तो बिल्कुल पॉइंटेड मत बनाना, और होता भी नहीं है। अगर बहुत ही अच्छी तरह से करोगे तब जाके वो पॉइंटेड होती है, वो नॉर्मली होता भी नहीं है। तो इस तरह से आप इरेजर का यूज करना, और पेंसिल को पूरी तरह से शार्प मत करना, और सो दैट वो पॉइंटेड बन जाए सारे पेंसिल। एक पेंसिल बना के आप रख दो, तो उससे क्या होता है, आईज या आप जब कोई स्केचेस बनाओगे या कोई एकदम से फेस ह्यूमन फिगर बनाओगे या एनिमल फिगर बनाओगे, और फिगर की आईज फेस नोज ये पॉइंट करोगे, तब आपको एकदम से शार्पन पेंसिल की जरूरत है। लेकिन जब आप बिल्कुल शार्प मत करना और उसमें क्या करना, आप जो थोड़ा सा मोटा रखना, उसकी जो ग्राफाइट है वो थोड़ा सा मोटा थिक रखना, सो दैट उससे क्या होता है जब आप पेंसिल करोगे, एक तो सॉफ्टनेस पेपर में जब हम ड्रॉ करते एक तो सॉफ्टनेस बरकरार रहती है, एंड सेकेंड थिंग उसमें जो होती है, हमें अगर उसमें इरेज करें तो इरेज के लिए ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, हल्का सा इरेज करने से हो जाती है। अब आती है इरेजर की बात आती है। इरेजर आप बाजार में अवेलेबल वैसे बहुत सारे इरेजर है, और वो जो मोटा इरेजर है स्केचिंग के लिए, वो इरेजर को बीच में से काट लो तो एक पॉइंटेड इरेजर बन जाती है। वो पॉइंटेड इरेजर से आप जहां जहां अंदर की जो स्केच करने के लिए स्पेशली या ड्रॉ करने के लिए, वो जो बीच वाले हम तो पूरा चीज है तो वो इरेज कर अगर करेंगे तो उसके लिए अलग इरेजर, वो मैं बताती हूं आपको। पहले जो चीज छोटा छोटा जो चीज हम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें से बीच में से कुछ भी चीजें ड्रॉ करना, इरेज करना हो, या कोई आउटलाइन ज्यादा आगे की तरफ या थोड़ा सा टेढ़ा हो गया उसको हमें क्लीन करना हो, तो उसके लिए ये शार्पन इरेजर की जरूरत होता है। शार्पन को आप खुद बना लेना, बीच में से काट के ऊपर की तरफ थोड़ा सा शार्प बन जाती है। एंड और एक इरेजर है नीडेड इरेजर, वो बहुत सॉफ्ट होता है। नीडेबल इरेजर जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, एंड उससे क्या होता है, आप अगर उसको जस्ट पेपर में ड्रॉ करने के बाद, सॉफ्ट पेंसिल से उसमें ड्रॉ करने के बाद अगर आपको उसमें से कुछ भी चीजें इरेज करना हो तो उसको जस्ट हाथ से उसको अच्छी तरह से अगर रब करोगे, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको रब करने से आपका पेपर का टेक्सचर क्वालिटी भी खराब नहीं होगा और आपने जो इरेज करना चाहते हो वो इरेज भी हो जाएगा। एंड और एक चीज है, ये जो नीडेड इरेजर है, वो इरेजर क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा डार्क हो गया कहीं भी, जैसे हम शेडिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है, तो वहां पे हम अगर इरेजर को हल्का सा उसमें लगा देंगे तो वो डार्कनेस कम हो जाती है। तो ये बहुत फायदा होता है, ये मटेरियल के बिना तो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो ये नीडेड इरेजर की बहुत जरूरत है। नीडेड इरेजर हम अगर यूज करें, पास में हमारे बहुत सस्ता मिलता है, बहुत छोटा छोटा एक ले लो और बहुत दिन चलता है ये, लेकिन ये है कि नीडेड इरेजर को हम ऐसा कर सकते हैं, हाथ से हम ये तो किसी तरह से हम इसका साइज बना सकते हैं हाथ से, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, तो इससे क्या होता है, हम कहीं का भी चीजें हम इरेज कर सकते हैं, तो इसीलिए नीडेड इरेजर की बहुत जरूरत है। अब आती है पेंसिल में, जैसे हमने ग्राफाइट पेंसिल हमने यूज किया, हमने आपको बताया कि एचबी पेंसिल और एच पेंसिल में क्या डिफरेंस है। अभी आती है चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल से हमने आपको बताया भी है कि डार्क या रफ लाइंस को हम बनाने के लिए हमें बहुत जरूरत होता है, क्योंकि चारकोल से अगर आप टोटल एकदम चारकोल भी मिलता है मार्केट में, पूरा चारकोल अगर आप ले लेंगे ना, उससे आपको ड्रॉ करने में मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट के ऊपर होता है, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है वो करते हैं। अभी आप फाउंडेशन स्टेज में हो, आपको आप एक चारकोल पेंसिल खरीद लेना और वो बहुत दिन तक चलता है, और उसको शार्प कर लेना, और शार्प करने के लिए वैसे ही आप शार्प करना, ये बिल्कुल भी शार्पन मत करना क्योंकि ये पॉइंटेड मत बनाना, तो इससे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो चारकोल पेंसिल कहाँ यूज करोगे, जब हम कुछ भी कंपोजिशन बना रहे हैं या हम जब कोई भी स्टिल लाइफ ड्राइंग कर रहे हैं, तो बनाने के बाद चारकोल से अगर हम आउटलाइन बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड सेकेंड थिंग, हम अगर इसमें कलर करेंगे, कलर करने से पहले हमें आउटलाइन हमें बनाना होता है, और आउटलाइन ये चारकोल पेंसिल से बहुत फायदा होता है, और बहुत अच्छी तरह से आप इसको दिखा सकते हो। नॉट ओनली दिस, अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट में भी बनाओगे, टू कलर्स में बनाओगे, तो आप ये चारकोल पेंसिल का यूज करोगे, जब ये बन जाएगा नॉट ओनली आउटलाइन, ऑब्जेक्ट का भी अंदर में भी कुछ भी चीजें आपको डिफाइन करना हो, कुछ भी चीजें आपको प्रोमिनेंट करना हो, तो वो सॉफ्ट पेंसिल से बनाने के बाद चारकोल पेंसिल का यूज करोगे। चारकोल पेंसिल का जब यूज करोगे, आप देखना जितना आप अच्छी तरह से उसको यूज करोगे, तो आप देखना कि वो प्रोमिनेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसी तरह से आप उसको थोड़ा सा हल्का सा अगर लगाओगे, चारकोल पेंसिल डार्क हो जाती है, तो उस तरह से आप उसको यूज करना। तो पेंसिल के बाद हम आते हैं ब्रश के। ब्रश हम कैसे यूज करते हैं? सो मेनी ब्रशेज आर देयर फॉर द ड्रॉइंग एंड पेंटिंग, सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ ब्रश वी शुड यूज फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रॉइंग एंड पेंटिंग। अ पेंट ब्रश इज अ ब्रश यूज टू अप्लाई पेंट और समथिंग इंक। द पेंट ब्रश इज यूजुअली मेड बाय क्लैंपिंग द ब्रिसल्स टू अ हैंडल विद अ फेरूल। दे आर अवेलेबल इन various sizes, shapes and material. Thicker ones are used for filling in and thinner ones are used for details. Stippler, short stubby rounds. Liner, elongated round. Dagger, looks like angle with longish hair, used for one stroke painting like painting long leaves. Scrapes, highly elongated rounds. Traditionally, the best watercolor brushes are made with Kolinsky sable. Kolinsky is regarded as the best grade of sable hair. Another option is squirrel, which holds more color than sable but has less snap. Bristles, also known as hair, can be natural, synthetic or combination of both. Ferrule, the silvery bit that connects the bristles with the handle. Crisps, the part of a ferrule that secures it to the handle. Handle, usually made of wood or acrylic. Artist brush size kya kya hota hai? Artist brushes are usually given numbered size along, although there is no exact standard for their physical dimensions. From smallest to largest, the sizes are 20x0, 12x0, 10x0, 7x0, 6x0, 5x0, 4x0, also written 0000. So brushes are fine as 30x0 are manufactured by the major companies but are not in common size. Sizes 000 to 20 are most common. These are the common brushes. Watercolor brushes kya kya hai? Which are usually made of sable, synthetic sable or nylon oil painting brushes, which are usually made of sable or bristles. Acrylic brushes, for the acrylic color only, which are almost entirely nylon or synthetic. Turpentine or thinner, used in oil painting, can destroy some types of synthetic brushes. However, innovation is synthetic bristles. Technology have produced solvent resistant synthetic bristles suitable for use in all media. Natural hair, squirrel, badger or sable are used by watercolorists. Due to their superior ability of absorb and hold water, bristles may be natural, either soft hair or hog bristles or synthetic brushes. Hog bristles, what is hog bristles? This is a stiffer and stronger than soft hair. It may be bleached or unbleached. Rigger brush is also called a liner or script brush. It tufted in longer so it can hold more paint and water at once. It is used commonly for hassle-free long lines, may they be straight, judged or curved. सो दीज आर द ब्रशेस। ये ब्रश को हम यूज कैसे करेंगे ये तो हमने बता दिया कि क्या क्या किस किस टाइप की ब्रश आपको मिलेगा, लेकिन आप अभी फाउंडर ग्रुप में हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा कि आप फाउंडर ग्रुप में हैं तो आप इतने सारे ब्रशेस ना खरीदें, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी कि इतने सारे ब्रश खरीदें, दैट इज अप टू यू। मैं जो बताऊंगी जो फाउंडर ग्रुप के लिए आपको जो ब्रशेस चाहिए, एक तो है फ्लैट ब्रशेस वाला फ्लैट ब्रशेस चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेपर है उसको कलर को पूरा भरने के लिए, जब हम पेज में बैकग्राउंड कलर भरते हैं तब हमें फ्लैट ब्रशेस वाला ब्रशेस चाहिए। उसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर का होता है, एक सेट मिलता है। तो कोशिश करना कि कम से कम तीन तो आप ले ही लेना, जो एक पॉइंटेड होता है, एक सबसे बड़ा जो साइज होता है क्योंकि फुल कवर करने के लिए, और जो बीच वाला हिस्सा भरने के लिए एक मिडिल टाइप का ब्रशेस होता है। देन नंबर है 4 या 5, इस तरह की कोई भी नंबर ले लेना, और एक 12 नंबर जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और एक 8 नंबर 1 पॉइंट ब्रशेस और 0 नंबर ब्रशेस भी आप ले लेना। लेकिन ये है फ्लैट ब्रशेस वाला। अब राउंड ब्रशेस वाला ब्रशेस भी हमें जरूरत होती है, क्योंकि हम जब कोई भी रिवर का सीन बनाते हैं, रास्ता का सीन बनाते हैं, या स्पेशली यूज फॉर द कंपोजिशन, एंड जब हम कोई भी नेचर स्टडी भी करते हैं, या हम कोई इस तरह की लैंडस्केप भी ड्राइंग करते हैं, तो ये सारी चीजों के लिए राउंड ब्रशेस वाला ब्रशेस बहुत जरूरत है। पर ये बात नहीं है कि राउंड ब्रशेस वाला ब्रश के बिना नहीं होगा, उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। कि अगर फ्लैट ब्रशेस ब्रशेस से भी आप कोई भी ब्रश से आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा मास्टर बनना पड़ेगा कैसे आप कर सकते हो, ये इसी तरह से आप सीखोगे। तो इसी तरह से मैं ये भी कहूंगी कि राउंड ब्रशेस वाला ब्रश भी जरूरत है, इस तरह से नंबर 1 लेना जरूर, एक 5-8 नंबर लेना, कम 5 या 8, और एक 12 नंबर वाला, क्योंकि जब भी कोई बीच वाला हिस्सा करने के लिए, या हम रिवर को रिवर बनाने के लिए, या कहीं भी कोई थोड़ा सा कर्विंग लाइन बनाने के लिए, राउंड ब्रशेस वाला ब्रश हमारे लिए बहुत फायदे रखता है। और हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि आप खुद भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, कागज पर कोई कलर लेके कैसे हमें बहुत फायदा होता है, और हमें बहुत आसानी से हम कुछ भी कलर कर सकते हैं, क्योंकि एक कलर करने के लिए एक चीजें हमें आपको बताना बहुत जरूरी है, कि जो लाइन है लाइन से बाहर ना चले जाए कलर, जो कलर आप यूज कर रहे हो। मानो कि आप रेड कलर यूज कर लो, फ्लावर्स का जो पेटल्स है उसमें रेड कलर यूज कर लो, अब पेटल की जो आउटलाइन है आउटलाइन से बाहर ना चले जाए, क्योंकि हाँ ये बात भी सही है कि दूसरा पेटल में भी हम रेड कलर यूज करेंगे, लेकिन वो कलर बाहर जाने से अच्छा नहीं लगता वो देखने में, क्योंकि हम हमारे लिए ऑलरेडी आउटलाइन बना हुआ है और वो आउटलाइन को कवर हो जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करना राउंड ब्रशेस वाला ब्रश से आप इसको अच्छी तरह से यूज करो। अब आती है स्पैटुला। अब स्पैटुला का क्या काम है, स्पैटुला से भी आप कलर कर सकते हो, लेकिन पहले आप थोड़ा सा ब्रशेस से आप कलर करना। और स्पैटुला से हम क्या करते हैं, जब हम पूरा पेज में हम कलर डालने के बाद, जैसे पोस्टर कलर हो, एक्रेलिक कलर हो, इस तरह की कोई भी थिक कलर डालने के बाद आप स्पैटुला से उसको स्प्रेड कर देते हैं, तो एक टेक्स्चर लुक आती है, टेक्स्चर सेंस भी आती है। जब हम हाथ लगाओगे तो एक टेक्स्चर फील होगा आपके, कि वो टेक्स्चर्ड पेपर टेक्स्चर हो गया और एक 3D लुक आ जाती है उसमें। तो इससे पैटुला का यूज करने से आपका ये इस तरह की कलर, थोड़ा सा कलर ज्यादा चाहिए होती है इसमें, और कलर बहुत ही अच्छी तरह से एक टेक्स्चर लुक आ जाती है। तो वो ब्रश से भी आता है, लेकिन ब्रश थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, और स्पैटुला से बहुत अच्छी तरह से टेक्स्चर लुक आती है। सो कलर्स क्या क्या हम यूज करेंगे, वाटर कलर यूज करेंगे, पोस्टर कलर यूज करेंगे, एक्रेलिक कलर यूज करेंगे, और क्रेयंस कलर भी यूज कर सकते हो। कलर पेंसिल की बात तो मैंने पहले ही कर दिया है, कलर पेंसिल से भी आप कलर यूज कर सकते हो। अब पेस्टल कलर से यूज करने के बाद, और ये जो डिफरेंट टाइप्स के कलर की बात किया है, ये कलर यूज करने के बाद, जैसे नॉर्मली ये जो वाटर कलर या पोस्टर कलर या एक्रेलिक कलर सूखने के बाद तो बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन जो पेस्टल कलर है वो तो सूखने की बात नहीं है ना, वो तो आपने कलर कर दिया, वो तो एकदम से लग गया कलर तभी तभी, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई भी पेज लगाओगे, अगर कोई भी दूसरा पेंटिंग लगाओगे, तो वो इसका कलर उसमें लग जाती है। तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पेस्टल कलर जहां पे यूज करोगे उसके ऊपर एक रफ शीट लगा देना कोई भी पेंटिंग में, और उसके ऊपर फिर दूसरा पेंटिंग रखना, या कहीं भी आप रखोगे स्टोर करोगे, तो इसके लिए आपको एक दूसरा एक रफ पेज या कोई भी ऐसी नॉर्मल पेज रख देना, उसके ऊपर आप दूसरा पेंटिंग रख के फिर आप यूज कर सकते हो। और ये जो कलर की वाटर कलर की बात है, वाटर कलर को आपको यूज करने के लिए वाटर कलर आप खरीदने के लिए आप बाजार में बहुत अवेलेबल है वाटर कलर, एंड वाटर कलर आप जरूर एक सेट रख लेना, और इसमें एक तो है कि इसमें शेडिंग का भी ना जाओ, 12 नंबर बस 10-12 का सेट जो मिलता है वो आप ले लेना। और वाटर कलर से आप जब कलर करोगे, कोई भी आप पेंटिंग बनाओगे, आपको स्पेशली पोर्टफोलियो सबमिशन में आपको प्रैक्टिस करना होगा, और वो बनाने के लिए आपको वाटर कलर का यूज करें तो अच्छी बात है। और जितना कलर मतलब हमने आपको बता भी दिया एज पर द गाइडलाइंस, आपको उस तरह से कलर यूज करना होगा। और कलर यूज करोगे तो आप देखना कि किस तरह से आप वाटर कलर का भी एक पेंटिंग बना लेना, और कलर सूखने के बाद तब जाके उसमें ड्रॉ करना। एंड पोस्टर कलर थोड़ा सा थिक होता है, उसको वाटर कलर के लिए हमें तो वाटर की भी जरूरत होती है, और वाटर के लिए एक कंटेनर रखना साथ में रखना जरूरी है। जब आप पेंटिंग के लिए बैठोगे, एक कंटेनर आपको आपकी साथ में हो। एंड एक जो बहुत एसेंशियल चीज है लेकिन वो कोई भी किताब में या कॉपी में आपको नहीं मिलेगा, एक रफ कपड़ा की इसलिए जरूरत है, हम जब एक कलर करने के बाद हम दूसरा कलर जब हम करेंगे तो उससे पहले हम ब्रश को पानी से धो लेंगे। जो कंटेनर है, कंटेनर में हमने साफ पानी रखा है, उस पानी से धोने के बाद हमें एक काम बहुत जरूरी है, वो है क्या, ब्रश को इस कपड़े से साफ कर लेना या पोंछ लेना उसमें, ताकि उसमें कोई भी पानी ना रहे, अच्छी तरह से पोंछ लेना। क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि जब भी हम कलर करते हैं कहाँ पे सॉफ्ट कहाँ पे डार्क ये करना है, तो वो बिल्कुल सही रहता है। तो इसीलिए आपको एक रफ कपड़ा, अब घर पे कोई भी कपड़ा वैसे पुराना कोई ओल्ड क्लोथ होता है तो वो एक छोटा टुकड़ा अब रख लेना अपने पास, और एक कंटेनर रखना साथ में, ब्रशेस रखना, पेंसिल इरेजर और शार्पनर की बात तो हमने कर ही दिया आपको। अभी आती है पोस्टर कलर। पोस्टर कलर भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप जैसे भी हो आप पोस्टर कलर एक साथ में रखना, एक पोस्टर कलर से भी आप पेंटिंग बनाना। क्योंकि ये तो ऐसा है कि हमने खरीद लिया, खत्म हो गया, एक ही बार खत्म कर दिया और रख दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको, छोटा छोटा पेज में आप प्रैक्टिस करना, और A4 साइज पेज में हमने जिस तरह से बताया गया है उस तरह से प्रैक्टिस तो आप छोटा पेज में करना, A4 साइज का लेके उसको भी हफ करके, या A3 साइज का लेके उसको हफ करके उसमें आप प्रैक्टिस के लिए करना। जब आप फाइनल करोगे तब आपको बड़ा वाला साइज में जिस तरह से बताया गया है उस तरह से आपको बनाना है, और उसमें वाटर कलर से पोस्टर कलर से ड्रॉ कर सकते हो। और एक्रेलिक कलर की भी बहुत अच्छा लगता है करने से, और वो एक्रेलिक कलर में ब्रश को जस्ट डुबो के आप कलर कर सकते हो। पोस्टर कलर का भी तो वही, हमें हम वाटर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, जहां पे आपको थोड़ा सा लाइट करना हो या मिलाना हो तब आप पोस्टर कलर सीधा लेके अपने कागज में लगा के फिर डायरेक्टली आप वाटर लेके आप उसको स्प्रेड कर सकते हो। जब जहां पे थोड़ा सा उसको स्प्रेड करना है, कहीं शेडिंग की बात आती है, जैसे पेड़ पौधे में हमें डार्क ग्रीन कर दिया है और पत्ते सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक ही कलर का होता है, एक डार्क ग्रीन कलर का ही होता है, नहीं, जो न्यू बॉर्न पत्ते होते हैं, लीव्स होता है, तो वो तो लाइट कलर का होता है, तो वो ग्रीन कलर को आपको लाइट करने के लिए एक तो लाइट कलर का भी कलर मिलता है, और अगर आप चाहो तो ग्रीन कलर में, जो ऐसे नॉर्मल ग्रीन कलर में थोड़ा सा पानी मिला के हम उसको, जैसे ब्रश को पानी में डाल के हम उसको स्प्रेड कर देते हैं। तो इस तरह से ही हम कलर को बहुत ही अच्छी तरह से यूज करते हैं, बहुत दिन तक चलता है। मटीरियल का यूज बहुत जरूरी है, मटेरियल के बिना कोई भी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो सकता या हम नहीं कर सकते। एक्रेलिक कलर की कम बात है, एक्रेलिक कलर कैन बी यूज्ड ऑन सरफेस बिसाइड कैनवस सच एज वुड मेटल फैब्रिक्स एंड सेरेमिक्स, दे आर यूज्ड इन डेकोरेटिव पेंटिंग टेक्निक एंड फॉक्स फिनिशेस टू डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। गुआश कलर क्या है? गुआश कलर इज अ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कलर, इट्स अ टाइप ऑफ water media paint consisting of natural pigments, water, a binding agent usually gum, arabic and sometimes additional insert material. Gouache is a design to be opaque. What is the difference between watercolor and gouache color? Can you imagine? Let us say gouache is more opaque than watercolor. Due to the transparency of the watercolor, the light is able to travel through the pigment and reflect off of the white paper, giving it a luminous quality that differs for gouache's matte finish. Opaque कलर क्या है ओपेक कलर? द टर्म ओपेक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन मीनिंग डार्क, मीनिंग नॉट ट्रांसपेरेंट. अ ओपेक सब्सटेंस डज नॉट लेट एनी लाइट पास थ्रू एट ऑल. अ पेंट दैट इज ओपेक विल गिव अ सॉलिड कलर. Blacks and whites are always opaque and any color mixed with them will become more opaque. So, this is the opaque color. So, I have already told you the watercolor and gouache color mein what are the difference. Gouache is more opaque than watercolor. So, hum koshish karenge, jyada tar hum watercolor ka hi use karenge. And gouache color बाद में यूज करोगे आप, बाद में जब आप उसके अच्छी तरह से बनाना सीख जाओगे, ड्रॉ करना सीख जाओगे, तब आप गुआश कलर का यूज करना. तो उससे क्या होता है, बहुत ही थोड़ा सा थिक होता है ना, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा लुक बन जाती है. एनकॉस्टिक, एनकॉस्टिक क्या चीज है? एनकॉस्टिक पेंटिंग ऑल्सो नोन एज हॉट वैक्स पेंटिंग. तो एनकॉस्टिक पेंटिंग कैसे करते हैं? मिक्स मीडिया आर्टिस्ट आर एनकॉस्टिंग टू एड टेक्सचर ऑफन टू एब्सॉर्ब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. द मीडियम कैन बी यूज एज पेंट, एडेसिव और बोथ एंड इट मिक्स विथ ऑयल बेस्ड मीडिया. अ ड्राई कलर क्या है? ड्राई कलर तो आप सभी को ही जानते हो, क्योंकि ड्राई कलर आप जो रंगोली आती है आप अपने घर पे ड्राई कलर का यूज करते हो, रंगोली बनाते हो, रंगोली डिजाइन बनाते हो, हम तो बोलते हैं रंगोली बनाते हो, आल्पना बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे हम डिजाइन बनाते हैं घर पे. तो ये इसीलिए ड्राई कलर आपके लिए बहुत नोन है. आप डिफरेंट डिफरेंट ड्राई कलर्स का क्या है? इट इज अ पाउडर कलर दैट इज मिक्स विथ वाटर एंड मिनरल स्पिरिट्स एंड रेजिन टू फॉर्म अ पेंट और स्टेन विच इज देन अप्लाइड टू द सर्फेस नीडेड कोरोसिन प्रोटेक्शन. तो ड्राई कलर का ये भी है कि हम सिर्फ ड्राई भी यूज, ड्राई तो यूज कर ही लेते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा पानी में मिला के वेट कलर, वेट बना के भी हम यूज कर सकते हैं. तो ड्राई कलर का फायदा बहुत होता है. हमने कहीं कहीं उसको थोड़ा सा वेट कर दिया है, कहीं उसको थोड़ा सा ड्राई, उसके साथ ड्राई मिक्स कर देते, एक तो बहुत ही अच्छा मिक्सिंग पेंटिंग बनती है. और जब हम उसको बनाते हैं ड्राई कलर को, जब हम रंगोली बनाते हैं तो ड्राई कलर में हम कभी कभी बनाते हैं, और नहीं कभी कभी नहीं, हमेशा ही बनाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि हम ड्राई कलर को सिर्फ ड्राई ही बनाना है और पाउडर के लुक आना चाहिए. पाउडर के लुक आते हैं तो छोटे बच्चे जब घर पे रहते हैं तो वो पैर से थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो खराब हो जाता है. तो इसीलिए आप वेट करके भी, पानी से मिला के भी कर सकते हो. पेस्टल कलर क्या है? पेस्टल कलर डिफाइंड एज एनी ह्यू विद अ हाई वॉल्यूम and low to medium saturation. In practice, however, when people say pastel, they usually refer to a more limited petals including mint green, mauve, coral and robin's egg blue, etc. Now we will come to discuss oil color. Ab oil color kya hai? Oil color mein हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कलर है ये ऑयल कलर. लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि अभी आप ऑयल कलर एकदम से ऑयल कलर से पेंटिंग बनाओ, ऑयल पेंटिंग जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि वो बनाने के लिए वो तापिन तेल की, ऑयल की जरूरत होती है. और ये इसमें काफी मेहनत, मतलब काफी सावधानी से ये करना पड़ता है ऑयल कलर. तो इसीलिए जब आप अच्छी तरह से सीख जाओगे, समझ जाओगे, आप ऑयल कलर का यूज बिल्कुल करना. और ये चीज है कि मैं इसलिए आपको बता रही हूं ताकि आपकी पहचान होनी जरूरत है. बहुत सारे अच्छी तरह से आप हर कलर को आप पहचानो और आप देखो कि किस तरह से आप कलर का यूज कर सकते हो. अभी आती है एक, तो हम जब हम बनाते हैं जो पेंसिल ड्राइंग से, पेंसिल कलर पेंसिल यूज करते हैं, तो कलर पेंसिल हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? कलर पेंसिल यूज करने के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, और वो भी मतलब ज्यादा हमें बहुत ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन एक बात मैं ये कहूंगी, कलर पेंसिल को कभी भी बिल्कुल शार्पन मत करना, वो थोड़ा सा थिक रहेगा, क्योंकि कलर को हमें कागज पर घिसना बहुत जरूरी है, कलर को लगाना बहुत जरूरी है. इसलिए शार्प करोगे तो वो टूटने का डर रहेगा, आपको बार बार डिस्टर्ब होगा. और इसीलिए आप उसको बिल्कुल कटर से कटिए, या शार्पनर से भी आप काट सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल ऊपर की तरफ बिल्कुल मोटा रहे, बिल्कुल थिन ना हो जाए. और वो मोटापन जो है वो थोड़ा सा कागज में पूरी तरह से आप उसको लगा देना. इसीलिए कलर पेंसिल का यूज करोगे तो कलर पेंसिल को तभी तभी यूज करना जो जैसे आप कोई ज्योमेट्रिकल शेप का कोई भी पेंटिंग बना रहे हो या कुछ भी चीजें बना रहे हो तो आप कोशिश करना कि कलर पेंसिल से करने के लिए कलर पेंसिल को आप अगर हल्का सा यूज करोगे तो वो एक शेड बन जाती है, लाइट शेड बन जाती है, उसी कलर का लाइट शेड बन जाती है। और अगर उसको थोड़ा सा डार्क करके करो, थोड़ा सा प्रेशर देके प्रेस करके करोगे तो वो डार्क शेड बन जाएगी उसी कलर का। ये इस तरह से आपको समझना है कि कलर को किस तरह से यूज करोगे और कलर को किस तरह से वो करोगे, यूज करोगे। सो लर्नर, आपको मैंने आज क्या क्या बताया, पेंटिंग के लिए आपको क्या क्या मटेरियल की जरूरत है, लाइक पेपर की जरूरत है, पेपर में कौन सा पेपर आप यूज करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर की यूज करोगे, एंड देन पेंसिल का यूज करोगे, पेंसिल में कौन सा पेंसिल यूज करोगे। एक बार मैं बता देती हूँ, एच पेंसिल जो है, सिर्फ एच पेंसिल जो है सॉफ्टर पेंसिल है, बहुत लाइट आता है उसमें, और जो एच बी पेंसिल है वो डार्कर पेंसिल है, उसमें डार्क कलर आता है और उसमें डार्क आता है। जिसको पहले यूज ना करो, सॉफ्ट पेंसिल को यूज करना, एच वाला पेंसिल को यूज करना, सो दैट आप जितना इरेज, अगर आपको इरेज करना हो कभी कभी कहीं कहीं जगह पे आपको उस चीज को सही करना हो तो आप जितना यूज इरेजर यूज करोगे तो कागज का टेक्सचर खराब हो जाता है, टेक्सचर खराब होने से कलर जब डालोगे तो कलर वो ठीक तरह से बैठता नहीं है। तो इसीलिए आप कोशिश करना कि सॉफ्ट पेंसिल से आप यूज करें। एंड जो इरेजर यूज करोगे, इरेजर यूज करने के लिए मार्केट से जो इरेजर मिलता है वही ले लेना, नॉर्मल इरेजर, उसको बीच में से काट लेना और वो तो थोड़ा सा शार्पन इरेजर बन जाती है। नीडेड इरेजर भी एक आध ले लेना जब आपको सुविधा हो या अकॉर्डिंगली, मतलब रहे तो अच्छा है। तो उससे क्या होता है, कागज को बिल्कुल क्लीन कर देता है, कागज कहीं भी आपको साफ करना है, क्लीन करना है, इरेज करना है तो नीडेड इरेजर बहुत जरूरी है, या बहुत ज्यादा थिक हो गया तो उसको शार्प करने के लिए भी इरेजर की जरूरत है। और ये मटेरियल के साथ आप अपना बहुत ही अच्छी तरह से पेंटिंग या ड्राइंग बनाओगे। नमस्कार।